کلام خدا میں یوں لکھا ہے عبرانی 4 باب اس کی 12ویں آیت میں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور موثر اور ہر دھوداری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ دوسرا تموتھیس 3 باب اس کی 16-17 آیت، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ آئے ہم خداوند کے حضور جھکیں، اپنی اپنی حالت کو جانچیں، خاموشی میں اس کے حضور جھک جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے یوحنا 4 باب اس کی 23 اور 24 آیت میں، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں۔ خداوند کے حضور جھکیں گے اور اپنے اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیں گے، کیونکہ اب یہ وقت ہے اپنی ساری توجہ کو خداوند کی طرف لگائیں، اپنی ساری فکروں کو، اپنے سارے بوجھ کو خداوند کو دیں، کیونکہ مایوسی، فکر، کسی طرح کا بوجھ گناہ ہے، اور اس کے لیے خداوند نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ جب جب بھی تمہاری رفاق اور شراکت میں گناہ پایا جائے تو میرے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرو، کیونکہ میں تمہاری ساری ناراضگی کو پاک کرنے میں سچا اور عادل ہوں۔ خدا باپ، تیرا شکر ہو آج کی اسی صبح کے لیے، آج کا جو بیج خداوند ہماری زندگی میں بویا جائے 100 گنا پھل لائے، اور سارا جلال ہم کو نہیں خدا باپ، تیرے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے نام کو ملے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میرے ساتھ نکالیں نئے عہد نامہ میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 19 باب اس کی 11 آیت سے، یہاں پر یوں لکھا ہے، جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی، اس لیے کہ یروشلم کے نزدیک تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ان باتوں کو جو سن رہے تھے، آپ جانتے ہیں وہ تمام لوگ ہیں جو پیچھے یرو میں داخل ہوتے ہوئے، وہ تمام لوگوں کی بھیڑ ہے، اور اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد ہیں، اور یسوع مسیح نے ان سے ایک تمثیل کہی، کیونکہ یسوع مسیح کے شاگرد اور باقی لوگ سوچتے تھے کہ جیسے وہ یروشلم کے نزدیک ہے، وہ بادشاہی کو قائم کرے گا، بادشاہی خدا کی ظاہر ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہودی جو کہ رومی حکومت کے متحد تھے، رومی حکومت ان پر حکومت کرتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ان سے رہائی پائیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ غلامی میں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق، جس طرح پچھلے پرانے عہد نامہ میں وہ تمام بادشاہ جو خدا نے مقرر کیے تھے، خدا کے بادشاہ جو مقرر کیے ہوئے تھے، ان کی بادشاہی میں، ان کی مختاری میں زندگی گزارتے تھے، وہ اس بات کو سوچتے تھے کہ ایسا ہی ہونے کو ہے، کیونکہ مسیح کے لیے یہی وعدہ ہے کہ وہ آئے گا اور داؤد کے تخت پر بیٹھے گا۔ لیکن یسوع مسیح نے جب یہ بات سنی تو 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ یہاں پر ہم جب امیر آدمی کو دیکھتے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح سے متعلقہ بات ہو رہی ہے، یسوع مسیح اپنے بارے میں بات کر رہا ہے۔ دور دراز ملک کو جانا، یعنی کہ یسوع مسیح کی یہ پہلی وہ آمد ہے جس میں یسوع مسیح زمین پر آیا، یعنی کہ پیدا ہوا، اس نے 33 سالہ زندگی زمین پر گزاری، پھر رومی حکومت کے حوالے کیا گیا، اور کیا ہوا، ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، بے عزت کیا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، اسے قتل کیا گیا، اور وہ کیا ہوا، صلیب پر مسلوب ہوا۔ اور یہی خدا باپ کا منصوبہ تھا بنی نوع انسان کے لیے کہ وہ زمین پر آئے اور صلیب پر بنینو انسان کے گناہوں کی مخلصی کا کیا کرے؟ کام مکمل کرے. سو یسوع مسیح پیدا ہوا, صلیب پر اس نے جان دی, قبر میں اتارا گیا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور یہاں پر لکھا ہے ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے, یعنی کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا اور پھر واپس, یعنی کہ دوسری آمد میں وہ بادشاہی حاصل کر کے آئے گا جو اس زمین پر وہ ہزار سالہ بادشاہی گزارے گا. سو آج ہم سیکھیں گے 13 آیت میں سے, اس سے مراد یعنی یسوع مسیح اپنے نوکروں میں سے, یسوع مسیح نے اپنے نوکروں میں سے یعنی کہ اس شخص یعنی کہ امیر آدمی, جو بات یسوع مسیح کے بارے میں ہو رہی ہے, 13 آیت میں لکھا ہے اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دی اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا. جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دی, یہاں پر جب نوکر کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو جب اس پر غور کرتے ہیں تو بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. جب ہم یونانی زبان میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر نوکر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جو مطلب نکلتا ہے غلام, یعنی کہ زر خریدا ہوا غلام, یعنی کہ خریدا ہوا غلام جسے خادم بھی کہا گیا ہے, نوکر بھی کہا گیا ہے, غلام بھی کہا گیا ہے, خدمت گزار بھی کہا ہے گیا, یعنی کہ وہ شخص جو دوسروں کی خدمت کے لیے مقرر کیا جائے. سو یہاں پر جو نوکروں کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد ہے مسیحی ایماندار, ہر وہ ایماندار جو کلیسیائے دور میں موجود ہے, یعنی کہ وہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے. جیسا پرانے دور میں جانتے ہیں کہ غلاموں کی منڈی میں سے غلام کو خریدا جاتا تھا اور وہ اپنے مالک کے متحد رہتا تھا, اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چلتا پھرتا بولتا اٹھتا تھا. لیکن مسیح میں جب اس نے ہمیں خریدا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا, اب تم چاہو تو میرے پاس سے دور جا سکتے ہو, اب تم چاہو تو تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو, کیونکہ دنیا کے مالک, جب ہم آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو جب غلام خریدے جاتے تھے تو وہ مالک کی مرضی سے بولتے تھے, وہ مالک کی مرضی سے کھاتے تھے, وہ مالک کی مرضی سے ہر ایک کام کرتے تھے. لیکن یسوع مسیح یہاں پر جو لفظ نوکروں کا استعمال کر رہا ہے, خود یسوع مسیح اپنے آپ کو بادشاہ اور نوکروں سے مراد غلام, خادم, خدمت گزار, ہر وہ ایماندار جو خدمت کے لیے بلایا گیا ہے. اور اس کے لیے بائبل مقدس انگلش کا جو لفظ دیکھتے ہیں بانڈ سرونٹ, یعنی کہ یسوع مسیح کا بندہ, بالکل یہی لفظ پالوس رسول اپنے لیے استعمال کرتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں رومیو پہلا باب اس کی پہلی آیت میں پالوس رسول یسوع مسیح کا بندہ سے مراد یعنی کہ خدمت گزار, یسوع مسیح کا خادم, یسوع مسیح کا غلام, یسوع مسیح کا خریدا ہوا. اور اسی طرح گلتیوں اس کا پہلا باب اس کی 10 آیت میں بھی یہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس حوالہ کو دیکھیں, یہاں پر نوکر کی بات کو آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کلام خدا میں سے کہ اس کے بارے میں کلام خدا ہمیں کیا کہتا ہے. سو گلتیوں پہلا باب 10 آیت میں بھی پالوس رسول ہی بات کو کہتا ہے, اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو, کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ کہتا ہے اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا, یعنی کہ مسیح کا غلام یا مسیح کا خریدا ہوا خادم نہ ہوتا اگر میں اپنی مرضی سے دنیا کو خوش کرتا, کیونکہ دنیا کو خوش کرنے میں مجھے کوئی فائدہ نہیں, مجھے ضرورت ہے جس نے مجھے آزاد کیا ہے, جس نے مجھے زندگی دی ہے, جس نے مجھے اپنے لیے بلایا ہے, اس کے لیے زندگی بسر کروں, یعنی کہ اس کو خوش کروں. और यही बात कुलसियों पहला बाप उसकी सातवीं आयत में भी, वहां पर एक पादरी का जिक्र मिलता है, पास्टर इफ्रास का। उसके लिए भी यही लफ्ज जब यूनानी में देखते हैं मसीह का दयानतदार खादम यानी के नौकर, यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फिर यकूब उसका पहला बाप उसकी पहली आयत में भी खुदा के और खुदावंद यसु मसीह के बंदा यकूब की तरफ से यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यहूदा पहला बाप उसकी पहली आयत में भी जो यसु मसीह का बंदा है, यहूदा जो के यकूब का भाई और खुदावंद यसु मसीह का सौतेला भाई, के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। क्यों ये लफ्ज की बाबत आपसे बात कर रहा हूं? क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो तमसील हम सीख रहे हैं, जो तमसील हम देख रहे हैं, उसका वजन बराबर रहे और उसका तल्लक कलाम खुदा के साथ सही तौर पर जुड़ा रहे। क्योंकि तमसील जब भी, मैंने आपको पहले सिखाया कि नए अहदनामा में 32 तमसील यसु मसीह ने कही है, और तमसील का मतलब है कहावत, कहना कुछ होना कुछ, यानी के गहराई की बातें कहना, किसी कहानी को बताना और उसके पीछे एक गहरा रूहानी मकसद पाया जाता है। और यहां पर देखते हैं उसने अपने नौकरों में से यानी के उन गुलामों को, आज आप वो खरीदे हुए यसु मसीह के खिदमत गुजार, यसु मसीह के लोग हैं जो खिदमत के लिए बुलाए गए हैं। और क्या लिखा है, उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी। यहां पर देखते हैं कि तमाम नौकरों को यानी के तमाम खादमों को एक जैसा ही क्या दिया गया है, एक जैसी ही रकम दी गई है, एक जैसी ही रकम दी गई है ताकि वो उससे क्या करें, कारोबार करें। रूहानी तौर पर आप में से हर एक को एक जैसी ही बरकत मिली है, आप सबको एक जैसा ही मौका हासिल है, आप सबको एक जैसा ही मसीह यसु में जमीन पर हक हासिल है। खा कोई पादरी है, खा कोई मुबशर है, खा कोई एल्डर है, सबको खुदावंद यसु मसीह में एक जैसा दर्जा हासिल है और सबको एक जैसी बरकत, एक जैसा ही एस्तहकाक हासिल है, शाही घराने के नस्ल के लोग होते हुए। आप खुदा में उसके बेटे और बेटियां हैं और खुदावंद यसु मसीह की तरफ से बुलाए हुए उन तमाम लोगों को यानी के हर एक ईमानदार के लिए एक जैसा ही मौका है कि इस जमीन पर जो जिम्मेदारी, इस जमीन पर जो जिंदगी दी गई है उसे गुजारा जाए। आज कोई नहीं कह सकता कि जी फलां पादरी के पास ज्यादा रूहुल कुद्दस का मसा है। नहीं, हर एक के पास एक जैसा ही रूहुल कुद्दस का मसा है। हर एक के पास खुदा के तख्त पर जाने की पहुंचने की, उस तक रसाई करने की कुदरत और कुव्वत हासिल है। हर एक को खुदा में मसावी मौका यानी के एक जैसा ही मौका हासिल है, एक जैसा ही हक हासिल है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मस्कन हो, यानी के खुदा तमाम ईमानदारों को कहता है कि तुम मेरे रहने की जगह हो। सो यहां पर 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा, मेरे वापस आने तक। यसु मसीह ने यहां पर जो बात कर रहा है तमसील में, कि मेरे वापस आने तक इन 10 अशरफियों से लेन देन करना यानी के कारोबार करना। यसु मसीह यहां पर उस दौर के लिहाज से एक बादशाह के तौर पर अपने नौकरों को पैसा दे रहा है कि वो दूसरे मुल्क में जा रहा है ताकि उसके पीछे वो सारे काम को उस खारी खेती बाड़ी को सारे उस संतलत में जो वो उनके हवाले करके जा रहा है उसमें क्या करें, काम को करें, उस जिम्मेदारी को निभाएं। इसी तरह रूहानी तौर पर यसु मसीह ने आपको रूहानी तौर पर 40 नेहमते दी हैं, 40 नेहमते दी हैं ताकि इस जमीन पर यसु मसीह का मकसद पूरा करें। यसु मसीह इस दुनिया को छोड़कर आसमान पर गया है और उसने आपको जिंदगी दी है, उसने आपको रूहुल कुद्दस की मामूरी दी है, उसने आपको अपना कलाम तहरीरी मुकाशफा यानी के बाइबल मुकद्दस दी है कि उसकी मर्जी को जानें। उसने आपको खुदा का कलाम के साथ साथ खुदा के लोग दिए हैं जो आपकी रूह के लिए खास कर मुकर्रर किए गए हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में खुदा का मकसद जाने, खुदा की मर्जी को जाने, खुदा के मंसूबा को जाने। सो क्या आप तैयार हैं इन बरकतों को इस्तेमाल करने के लिए? क्या आप जानते हैं कि आप मसीह यसू में कौन हैं? क्या आपकी हालत आपको मालूम है? क्या आपको ये मालूम है कि आप कैसा हक रखते हैं? क्या आपको पता है आपकी शिनाख्त क्या है? क्या आपको पता है आपकी कितनी अहमियत है खुदावन में? वो कहता है कि मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं वैसे ही वो आपको अपने बेटे और बेटियां कहता है। और खुदा क्या करे कि बनी नू इंसान को कुछ और दे। सबसे बड़ी बरकत के उसने अपना बेटा दिया ताकि हमारे पास हमेशा की जिंदगी हो। फिर उसने हमें वो हर एक चीज दी है, हर एक चीज दी है जो हमें जरूरत है इस जमीन पर जिंदगी गुजारने के लिए। क्या आप उन सब चीजों को जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार खुदा के हजूर मियां मिठू बन के आने की जरूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस कहीं पर भी नहीं कहती कि सिर्फ एक दिन खुदा को आकर खुश करना है। बाइबल मुकद्दस कहती है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। क्या हफ्ते में एक बार रोटी खाते हैं? हरगिज नहीं, 3 दफा। और क्या पूरी आयत कहती है मत्ती 4:4 में, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। आप रूहानी तौर पर किस तरह जिंदा रह सकते हैं? जिंदा रहने से मुराद के किस तरह आप सेहतमंद रूहानी तौर पर किस तरह आप रूहों में ममूर रह सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वाहद एक ही रास्ता है बाइबल मुकद्दस को अपनी रोजमर्रा की खुराक बनाना। बहुत दफा लोगों के पास बहाना होता है कि मैं जी बाइबल नहीं पढ़ सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर चर्च की वेबसाइट को देखें www.gbcpakistan.org। वहां पर आपको उर्दू में बाइबल मिलेगी। नहीं पढ़ सकते, बाइबल को सुने। अगर नहीं पढ़ सकते, ये तमाम पैगामात बाइबल मुकद्दस की जो तालीम आपको दी जाती है, अगर कोई कहे कि जी मैंने आज का पैगाम जाया कर दिया, मैं सुन नहीं पाया, मैं घर में सुन रहा था, ऑनलाइन कलाम खुदा को सुन सकते हैं। का गालबन 75 से 76 मैसेज वेबसाइट पर पड़े हैं, सुन सकते हैं। खुदा ने मुमकिन किया है ना कि एक दिन बल्कि हफ्ते में 6 दिन उसके हजूर आ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसकी मर्जी को जान सकते हैं, उसके मंसूबा को जान सकते हैं, उन बरकतों के बारे में जान सकते हैं। 15 मिनट या 10 मिनट बोलने से रूहानी जिंदगी का मकसद हरगिज नहीं मालूम कर सकते। दस या पंद्रह मिनट की बात की और बात खत्म कर दी, लो जी कलाम हो गया। एस, इससे गुजारा नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस को बड़े ही संजीदगी के तौर पर अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। और क्या लिखा है, उसने अपने नौकरों में से दस को बुलाकर दस अशरफियां दी। रूहुल कुद्दस की मामूरी आपके लिए मौजूद है और वो आपको हिकमत दनाई देगा कि आप समझें। बाइबल मुकद्दस कहती है यकूब पहला बाप उसकी गालवन पांच लिया पांचवी आयत में, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो मुझसे मांगे, मैं बगैर मलामत, बगैर झिड़के, बगैर कोई बुरा भला कहे, खुदा कहता है मैं फयाजी के साथ, शफकत के साथ, रहमदिली के साथ, मोहब्बत के साथ तुमको क्या करूंगा, हिकमत अनायत करूंगा। लेकिन आज हम बहुत मसरूफ हैं क्योंकि हमारा मुखालफ हमसे कसरत से झूठ बोल रहा है। हम अपने मुखालफ के झूठों में, फरेबों में कसरत से जिंदगी बसर कर रहे हैं, कसरत से उसकी झूठी बातों को अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हैं, बजाय इसके कि खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना बादशाह जानते हुए जो जिंदगी उसने दी है उसकी ताबेदारी में गुजारें। सो उसने दस नौकरों को, यानी के यहां पर वो तमाम ईमानदार हैं, बुलाकर क्या दी है, दस अशरफियां, यानी के उसने ये खिदमत करने के लिए ये जिम्मेदारी दी है ताकि हम इस खिदमत को करें। ये हर एक के लिए है। कोई नहीं कह सकता कि जी मुझे मालूम नहीं हुआ। नहीं मालूम हुआ तो कलाम को सुनने की जरूरत है। उसने अपने दस नौकरों को बुलाकर उन्हें दस अशरफियां दी और क्या कहा कि लेन देन करना। आज हम मसीह यीशु में शाही काहिन हैं, किस तरह हर रोज उसकी हजूरी में आते हैं। हम दलेरी के साथ उसके पास आ सकते हैं। शाही काहिन से मुराद हर एक बेटी बेटा मसीह यीशु में क्या है, काहिन है, यानी के जिसे पादरी कह सकते हैं, जिसे चरवाहा कह सकते हैं, जिसे निगेबान कह सकते हैं। और ये रूहानी वो बरकत है जो आप में से हर एक को हासिल है। आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं कि मेरे लिए दुआ करें। आप खुद खुदा के पास जा सकते हैं। बहुत दफा लोग मुझे कहते हैं कि जी खास दुआ मेरे लिए करें। मैं उनको यही बताता हूं कि जो बरकत, जो कुदरत खुदा ने मुझे दी है वही कुदरत आपको दी है। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? बहुत दफा हम सुनते हैं लेकिन यकीन नहीं करते। बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस कहती है वो सच है। आप वो कुदरत रखते हैं जो कुदरत मुझे या किसी और को इस दुनिया में अगर कोई आप देखते हैं कि हासिल है, वो कुदरत आपको हासिल है, वो बरकत आपको हासिल है। और ये है रूहुल कुद्दस की कुदरत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। और यहां पर यीशु मसीह ने दस नौकरों को बुलाकर क्या तमसील में कहा है, दस अशरफियां दी। वो हर एक चीज दी जो मसीही जिंदगी को गुजारने के लिए जरूरी है, हर वो चीज। अगर कोई सीखना चाहता है, भाई जुल्फकार, भाई क्रिस, भाई रिजेश, और खास करके वेबसाइट मौजूद है, जितना चाहे मुतालिया कर सकते हैं। अगर कोई जानना चाहता है यूनानी इब्रानी जबान को, राबता करे, उनके लिए वो सारी जरूरत की चीजें मुहैया की जाएंगी। और ये किस लिए है, ताकि आप अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी का मकसद जाने, ना कि सिर्फ हमें खुश करना है, ना कि सिर्फ दुनिया को खुश करना है, अगर भाई जुल्फकार ने अपनी जिंदगी को खुदा के लिए दिया हुआ है तो उसने किसी के लिए नहीं दिया, उसने खुदा की उस बुलाहट को पहचाना है और जो जिम्मेदारी दी है वो उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और वो दिन दिन भर इसी बात में मगन रहते हैं ताकि जो नेहमत जो बरकत जो जिम्मेदारी मिली है जब यीशु मसीह आए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। और यहां पर जो बात हो रही है उनसे कहा मेरे वापस आने तक, यहां पर ये यीशु मसीह की वो तख्ते अदालत है जहां पर ईमानदारों को अजर दिया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी, ये अदालत सिर्फ और सिर्फ ईमानदारों के लिए है। और यहां पर उन तमाम ईमानदारों से पूछा जाएगा कि मैंने तुमको इतनी नेमतें इतनी बरकतें दी लेकिन तुम्हें उसने तुमने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। आज हमारा दिल कहां पर है, जमीन पर है या फिर आसमान पर? आज हम खजाना कहां पर जमा कर रहे हैं, जमीन पर या आसमान पर? मेरे साथ एक हवाला देखें, मत्ती की इंजील उसका छठा बाप उसकी गालबन उसकी 19वीं आयत, यहां पर यीशु मसीह पहाड़ी आवाज में बात करते हुए कहते हैं अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा जंग जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाता और चराता है, बल्कि अपने लिए आसमान पर जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग लगेगा और ना वहां चोर नकब लगाएगा और ना नकब लगाएगा और चुराता है, क्योंकि जहां तुम्हारा माल है वही तेरा दिल भी लगा रहे। अगर जमीन पर जमा करेंगे तो जमीन पर चोर जो कि इब्लीस है वो उसे चुरा लेगा। अगर आसमान पर, यहां पर बात हो रही है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसे रूहुल कुदस की उन नेहमतों के बायस उन रूहानी बख्शिशों के बायस और उस बड़े बड़े हक के बायस जो हमें हासिल है कि मसीह यीशु में हमें उसने काहिन ठहराया है, मसीह यीशु में हमें उसने एलची ठहराया है कि नूर के फर्जंदों की तरह जिंदगी गुजारें। लेकिन आज लोग बहरे मुर्दा ऊंचा सुनने वाले हो गए हैं क्योंकि अपना खजाना और अपना दिल जमीन की बातों पर इन जमीन की चीजों पर लगाया हुआ जहां पर जंग और कीड़ा लगेगा। और ऐसी ही बात यीशु मसीह की तख्ते अदालत के सामने जब ईमानदारों को अनाम दिया जाएगा, जब यीशु मसीह ईमानदारों को अजाज देगा, क्या आप चाहते हैं उन नामात को उन बरकात को हासिल करने के लिए जो यीशु मसीह ने तैयार की हैं? मेरे साथ एक हवाला देखें फिलिपियों 2 उसकी 8वीं आय से, माफ करना इफिसियों 2 उसकी 8वीं आय से, यहां पर लिखा है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फखर ना करे, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए जो नेक काम करने हैं उन सारी नेक बातों को जो उसकी मर्जी को पूरा करना है पहले से तैयार की हैं, पहले से तैयार की हैं ताकि जब यीशु मसीह के सामने हाजिर हों तो वो कहे कि शाबाश मेरे वफादार नौकर, शाबाश मेरे वफादार बंदे, शाबाश मेरी वफादार बंदी। कैसे अजीम अल्फाज हैं जो मुबारक खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलेंगे उन ईमानदारों के लिए जो इस दुनिया की किसी भी दौलत से खरीदे नहीं जा सकते। शाबाश ईमानदार बेटी, शाबाश ईमानदार बेटे, उसने हमारे लिए जिम्मेदारी दी है कि ईमानदार होते हुए जमीन पर जिम्मेदारी को गुजारें। बहुत दफा मुझे खुशी होती है जब भाई इफ्तिखार के बेटे जान को देखता हूं, भाई जुल्फकार के बेटे पॉल को देखता हूं, छोटी बेटी कैरी को देखता हूं और खासकर बीबी को जो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में जा चुकी है अपनी उम्र के उस हिस्सा में, सर्दी में, सर्दी की कसरत में सबसे पहली वो खतून जो खुदा की बंदी इज्जत के लायक है, जो मेरी नजर में बहुत ही बड़ा दर्जा रखती है, मेरे दिल को बहुत मुसर्रत देती रही, किस लिए? सर्दी में उठकर सुबह चर्च में आती थी और कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। ये है वो मोहब्बत मसीह के साथ और खुदावंद में जो खुशी, जो मसरत, जो फखर, जो भरोसा, जो यकीन है। ये छोटा बेटा, भाई इफ्तिखार का छोटा बेटा जान अपनी बगल में बाइबल लिए हुए सुबह को सर्दी में चलता हुआ यहां पर आता है। छोटी बेटी कैरी, रूफन, अकील, इनको देखें कि कितनी हमारे लिए बड़ी हौसला फजाई है, कितनी हौसला फजाई है। लेकिन बहुत से माँ बाप का जो बहाना है, नहीं नहीं बहुत सर्दी है, चर्च में जाने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं खुदा के कलाम के बारे में सीखने की जरूरत नहीं। याद रखें, हर एक ईमानदार को उसने क्या दी है? एक जैसी बरकत, एक जैसा हक, एक जैसा मौका दिया है और ये मौका सिर्फ और सिर्फ इसी जमीन पर हासिल है। खुदावंद का शुक्र हो के हमारे रिवाज के मुताबिक जब नई दुल्हनें आती हैं तो वो साल भर अपने घर से या 6 माह अपने घर से निकलती नहीं। लेकिन मुझे फक्र है अपने भाई कैसर की बीवी पर कि वो अपनी शादी के 2 हफ्ते बाद ही खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए उसकी हैकल में हाजिर हो गई। ये बातें बहुत दफा हौसला फजाई का बाश बनती है जब देखते हैं लोगों की हालत के, लोग मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में अपने घर से, अपनी रजाई से निकलना नहीं चाहते। लेकिन खुदावंद से हर एक के लिए मेरी यही दुआ रहती है कि खुदा बाप हर एक अपनी जिंदगी में जो तूने मकसद, जो उनकी मंजिल, जो उनके लिए तेरा मंसूबा, जिसके लिए तूने उसे, तूने उन सबको पैदा किया है, इस जमीन पर जानने वाले बने। याद रखें, यही मौका है इस जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा करने का, यीशु मसीह के लिए दुख उठाने का, यीशु मसीह के लिए गवाही देने का, यीशु मसीह के लिए कुर्बान होने का। आसमान पर कोई ऐसा मौका नहीं होगा क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि ना वहां पर रोना, ना दांतों का पीसना, ना कोई गम, ना दुख, ना तकलीफ, वहां पर कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने कलाम में? लूका की अंजील उसका 19वां बाप उसकी 12वीं 13वीं आयत में उसने कहा, मेरे वापस आने तक लेन देन करना आज। हम इस लेन देन को किस तरह कर सकते हैं? खुशखबरी का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, अपने पड़ोसी को कहना कि भाई बहन, खुदा का कलाम मौजूद है, खुदा के लोग मौजूद हैं। नाउमीदी में नहीं, जब तंगी हो, जब दुख हो, तब मुसीबत हो, तब यसु यसु यसु। जब मुसीबत, दुख, तकलीफ दूर हुई तो फिर कौन यसु? फिर कौन सा चर्च? फिर कौन से खुदा के लोग? हर एक को एक जैसा मौका हासिल है जमीन पर और ये जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, ये जिंदगी बहुत थोड़ी है। फैसला आपके हाथ में है कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें अपना कलाम दिया है कि हम उसकी मर्जी को और उसकी अकल को, उसके जहन को, उसके फहम को जाने। बाइबल मुकद्दस को जानना मुश्किल नहीं है, बाइबल मुकद्दस कलाम दा बहुत सादा सा कलाम है जो उसने दिया है ताकि उसकी मर्जी को पूरा करें। आए हम खुदावंद के हजूर झुकें। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और जो खुदावंद मंसूबा, जो मर्जी, जो जिम्मेदारी तूने ईमानदारों को सौंपी है उसे पूरा करने वाले बने। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।